दिल्ली सिर्फ दिलदार ही नहीं, ये इतिहास का एक बड़ा पुलिंदा है।
हम आपके पास एक दरख्वास्त लेकर आए, हमें फौज का कमांडर बनाया जाए, हम भी ये जंग लड़ना चाहते हैं।
7 बार उजड़ी और फिर बस गई, इसके दिल में दफन है हजारों राज, चौंकाती है हर कदम पर, करती है इश्क में गिरफ्तार, सुनाती है अपने जुल्म की दास्तान। नवभारत गोल्ड की स्पेशल सीरीज में सुनिए दिल्ली की वो तारीखें जो कभी खून से लिखी गईं, तो कभी इश्क की स्याही से, जो सांसों को थाम दें, दिल को धड़का दें। हैरत अंगेज दिल्ली के इन किस्सों को लिखा है मोहम्मद असगर ने।
जब तक भारत सरकार हमारे खानदान की कुर्बानियों को कबूल नहीं कर लेती, जब तक हमारे रहने का शाही बंदोबस्त नहीं कर देती, तब तक हम भी अपने लोगों के साथ यहीं रहेंगे।
ये जालिम कुदरत हमारी बर्बादी में खुश होती है, इसलिए अब मुझे किसी चीज की ख्वाहिश नहीं होती।
ये उस महल का दर्द है जिसकी आगोश में एक बेगम और उनके 2 बच्चों ने तड़पते हुए दम तोड़ा। बेगम ने जहर पिया, उनकी प्रिंसेस नामालूम कैसे मरी और प्रिंस की तो सिर्फ लाश मिली। किसी को खबर नहीं कि महल की 4 दीवारी के अंदर कब क्या हुआ। बस मालचा महल ही उनकी मौत के गम में शरीक रहा, जिस महल ने बादशाहों को शिकार करते देखा था, जिस महल ने शौक पूरे होते देखे थे, अब वही महल शाही खानदान को शिकार होते देख रहा था, उम्मीदों को बिखरते देख रहा था। मालचा महल की लिखी गई तारीखों के पन्ने पलट रहे हैं मोहम्मद असगर। आइए उस महल में दाखिल हों जो गहरे राज समेटे अपनी बदहाली पर अश्क बहा रहा है। जंगल में बना ये महल आज भी अनदेखी का शिकार है। कभी ये बादशाहों की शिकारगाह हुआ करता था, आज चमगादड़ें छतों से झालर की तरह लटकी हैं, दीवारों पर रेंगती छिपकलियां, लंबी लंबी घास और दरवाजे गायब। ये महल दिल्ली में रायसीना हिल्स के पास ही चाणक्यपुरी इलाके में है। कैसे ये महल वजूद में आया, इस बारे में इतिहासकार राणा सफवी से बात की गई।
फिरोज शाह तुगलक ने जब दिल्ली का 5वां शहर बसाया, जिसको फिरोजाबाद कहते थे, आजकल तो बहुत सिमट के रह गया है फिरोज शाह कोटला, सिर्फ उनका वो जो महल था और जो उनका फोर्ट था, किला था, वही रह गया है, लेकिन ये पहले बहुत बड़े एक एरिया में बसाया गया था और फैला हुआ था। आज का जो शाहजहानाबाद है उसमें भी कुछ हिस्से फिरोजाबाद में आते थे, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो रिज है वहाँ तक ये फिरोजाबाद जाता था। जमुना के किनारे ये शहर बसाया गया था।
शहर बसाया गया, जरूरत के महल आसपास बनाए गए। इन महलों में रहने वाले बादशाहों के शौक भी थे। इन शौक में शिकार करना बेहद खास था, क्योंकि शौक में बहादुरी की झलक थी। शिकार करना था तो शिकारगाह भी बनाने की जरूरत महसूस हुई, ताकि कभी कभी बादशाह वहां पर रात बसर कर सकें।
फिरोज शाह ने काफ़ी साल हुकूमत की और उनके ज़माने में उन्होंने बहुत ज़्यादा इमारतें भी खड़ी करी। उन्हें काफ़ी बिल्डिंग का शौक था और उनके ज़माने के काफ़ी मस्जिदें और किले और शिकारगाह मौजूद हैं, जिसमें से एक भूली भटियारी का महल है, एक कुश के शिकार है रिज के ऊपर, और उन्हीं में से एक है मालचा महल। मालचा जो था वो उस इलाके का नाम मालचा था, मालचा मार्ग कहलाता है भी, और वहाँ पर उन्होंने एक अपना शिकारगाह बनाया था जिसको मालचा महल कहते हैं।
ये शिकारगाह मालचा इलाके में बनी थी। सेंट्रल रिज में मौजूद करीब 700 साल पुरानी यह शिकारगाह सुर्खियों में उस वक्त आई जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तकरीबन 10 साल तक एक राजकुमारी ने एहतजाज किया। राणा सफवी बताती हैं कि उसने खुद को नवाब वाजिद अली शाह के खानदान का बताया था।
एक खानदान आया था और रेलवे स्टेशन के ऊपर बहुत दिन बैठा रहा था, उन्होंने कहा था कि हम नवाब वाजिद अली शाह के डिसेंडेंट्स हैं और उन्होंने कि हमें यहाँ पे एक जगह दी जाए रहने के लिए, और फिर उनको जो DDA फ्लैट या कुछ दिए गए थे वो उन्हें पसंद नहीं आए और वो जाके मालचा महल में रहने लगे थे।
अवध के नवाबी खानदान का वारिस बताने वाली वो राजकुमारी खुद को विलायत महल की बेगम कहती थी। उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपना निज़ाम कायम कर लिया था उनके पास दो बच्चे थे, प्रिंसेस सकीना और प्रिंस अली रजा उर्फ साइरस। ये सब 1970 के दशक की बात है। विलायत महल ने रेलवे स्टेशन के बीआईपी लॉन्ज में अपना दरबार खूबसूरत फारसी कालीनों से सजा लिया था। इनकी छोटी सी सल्तनत में थे ग्रेट डेन, जर्मन शेफर्ड और नियोपोलिटन मास्टिफ जैसे विदेशी नस्ल के 15 कुत्ते और 7 वर्दीधारी नेपाली खिदमतगुजार। रेलवे के अफसर उन्हें हटाने के लिए आते तो बेगम विलायत उन्हें डरा कर भगा देती थी।
खबरदार जो मेरे करीब कोई आया भी, मेरे पास ये सांप का जहर है, पीकर अपनी जान दे दूंगी मगर अपनी जगह से नहीं हिलूंगी। मेरे जिंदा रहते इस जगह से हटाना तो दूर, कोई मुझे छू भी नहीं सकता।
बेगम अफसरों को धमका देती, अपने कुत्तों को उन पर छोड़ देती थी। अफसर उल्टे पांव जान बचाकर लौट आते। ये शाही कुनबा मांग कर रहा था कि सरकार उनको वो विरासत सौंपे जो उनके बाप दादा छोड़कर गए हैं। उनका दावा था कि उनके खानदान ने 1857 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हुई जंग में कुर्बानी दी, मगर सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज करती रही। बेगम अपनी जिद पर अड़ी थी।
जब तक भारत सरकार हमारे खानदान की कुर्बानियों को कबूल नहीं कर लेती, जब तक हमारे रहने का शाही बंदोबस्त नहीं कर देती, तब तक हम भी अपने लोगों के साथ यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे।
बेगम खुद को नवाब वाजिद अली शाह का वारिस बता रही थी। वो वाजिद अली शाह जिनको 1856 में अंग्रेजों ने सत्ता से बेदखल कर दिया था, उनको कलकत्ता जेल में डाल दिया गया जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 26 साल गुजारे। 1947 में देश आजाद हुआ, मगर तब तक वाजिद अली शाह का खानदान इधर उधर बिखर चुका था। सामने आ गए थे कई लोग जो दावा कर रहे थे कि वो नवाब के वारिस हैं। प्रधानमंत्री नेहरू ने नवाब के खानदान को कश्मीर में घर दे दिया था, मगर अफसोस 1971 की आग में वो घर जल गया। बेगम अपने बेटे और बेटी के साथ लखनऊ आ गईं। उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस सरकार ने तो राजाओं के भत्ते भी खत्म कर दिए थे, ऐसे में पुराने महलों को देना नामुमकिन था। सरकार बेगम को समझाने की कोशिश तो कर रही थी मगर मांग को मानने से इनकार कर रही थी। तब बेगम के बेटे अली रजा ने कहा था,
हम लोग रिक्वेस्ट नहीं करते, मांग करते हैं। हमारी मांग है कि हमारे रहने का बंदोबस्त किया जाए।
आखिरकार इंदिरा गांधी ने उनकी बात सुन ली और मालचा महल उनको दे दिया गया। फिरोज शाह तुगलक ने इस महल को 13वीं शताब्दी में बनवाया था। ये महल जरूर था मगर इस आशियाने में न बिजली थी न पानी का इंतजाम। ये महल मिलने से पहले बेगम को उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी ऑफर किया था, जिसे कबूल करने से बेगम ने इनकार कर दिया था।
वो हमें एक मॉडर्न घर देना चाहते थे जिसमें हम ही रह सकते थे, क्या हमारे डॉग्स को रहने का हक नहीं है, फिर हम वो घर क्यों लेते।
बेगम अपने दोनों बच्चों और कुत्तों के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन छोड़कर चली गई और 28 मई 1985 को मालचा महल में शिफ्ट हो गई, जिसके गेट पर लिख दिया गया, अंदर आना सख्त मना है, गोली मार दी जाएगी। इस परिवार ने महल की चार दीवारी में खुद को कैद कर लिया। वो किसी से मिलना पसंद नहीं करते थे। इस परिवार के सितारे गर्दिश में थे मगर दिमाग में महारानी होने की जिद बाकी थी। 10 सितंबर साल 1993 ये वो दिन था जिसका सूरज प्रिंसेस सकीना और प्रिंस अली रजा के लिए कयामत बनकर नमूदार हुआ। हीरे और मोती को पीसकर बेगम विलायत ने पी लिया। छोटी सी सल्तनत की रानी हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत हो गई। बाद में जब प्रिंसेस सकीना ने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू दिया था तो अपना दर्द बयान किया था।
10 सितंबर 1993 को दोपहर 2:40 पर हर हाइनेस ने हमारा वक्त हमेशा के लिए रोक दिया।
बेगम के बच्चे अपनी माँ को हर हाइनेस कहते थे, यानी रॉयल महारानी। बेगम विलायत महल की जिंदगी 62 साल की रही। खुदकुशी करने के बाद बेगम की लाश 10 दिन तक उनकी स्टडी डेस्क पर पड़ी रही थी। उनके बच्चे मातम मना रहे थे। माँ की मौत के बाद बेटी सकीना ने सिर्फ काले रंग के कपड़े ही पहने। दोनों भाई बहन अकेले रहते, किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखते। कई पत्रकारों ने इनसे मिलने की कोशिश की। विदेशी मीडिया से तो इस परिवार ने बात की, लेकिन इंडियन मीडिया से दूरी बनाकर रखी। जब कभी किसी पत्रकार से बात करते तो हमेशा अपनी माँ की शान के कसीदे पढ़ते थे। दुनिया से उन्हें बेहद नफरत सी हो गई थी। 1998 में न्यूयॉर्क टाइम्स को प्रिंसेस सकीना ने इंटरव्यू दिया था।
मुझे समझ आ गया है कि ये दुनिया कुछ नहीं है, ये जालिम कुदरत हमारी बर्बादी में खुश होती है, इसलिए अब मुझे किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं होती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम जिंदा लाशों के खानदान बन गए हैं।
और फिर एक रोज प्रिंस अली रजा की लाश मिली। सकीना महल के साथ क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चला, बस अंदाजा लगाया गया कि प्रिंस की मौत से एक दो साल पहले ही सकीना मर गई। दिल्ली के शोर में तीन मौतों की चीखें भटक रही हैं, है कोई जो उनका मर्सिया लिखे? मालचा महल सवाल कर रहा है कोई जो पुरसा देने उनके दर पर आए? शायद फिर मैं गुलजार हो जाऊं। इस गुलिस्तां के बर्बाद होने की दास्तां अभी खत्म नहीं हुई है, बाकी है, बाकी हैं मालचा महल के दर्द की आहें जो खंडहर में दफन होती जा रही हैं। दूसरी किस्त में जानिए, प्रिंस की मां कोई राजकुमारी नहीं थी, ये सब एक झूठ था। नव भारत गोल्ड की खास पेशकश में आप सुन रहे थे एक महल और तीन गुमनाम मौतें। बेगम विलायत महल के किरदार को आवाज दी है कात्यायनी उप्रेती ने। प्रिंसेस सकीना के किरदार में थी कोमिका माथुर और प्रिंस अली रजा के किरदार में थे शैलेंद्र पांडे। इसके दूसरे पॉडकास्ट में जरूर सुनिएगा बेगम के बच्चों की हकीकत और मालचा महल का दर्द। अब अपने दोस्त रोहित उपाध्याय को दीजिए इजाजत, सुनते रहिए नवभारत गोल्ड। नमस्कार। इस तरह के और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनने के लिए विश्व की सर्वश्रेष्ठ हिंदी इंफरटेनमेंट सर्विस नवभारत गोल्ड पर लॉगिन कीजिए। गोल्ड के पॉडकास्ट का खजाना मिलेगा नवभारत गोल्ड.com पर।